आज हम जापान की साम्राज्यवादी नीति पर चर्चा करेंगे। वाशिंगटन सम्मेलन के बाद लगभग एक दशक तक जापान की साम्राज्यवादी गतिविधि शिथिल पड़ी रही और वह शांति की नीति का अनुसरण करता रहा। इस अवधि में उसने साम्राज्य विस्तार की दिशा में कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया। इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि वाशिंगटन सम्मेलन ने चीन की प्रादेशिक अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता की अंतर्राष्ट्रीय गारंटी दी थी, जबकि जापानी साम्राज्यवाद के विस्तार का क्षेत्र केवल चीन ही था। वाशिंगटन सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों के साथ जापान ने भी वचन दिया था कि वह चीन के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा और उसकी प्रादेशिक अखंडता तथा राजनीतिक स्वतंत्रता का अतिक्रमण नहीं करेगा। इसलिए चीन के क्षेत्रों में घुसकर जापान के लिए नियंत्रण करना कठिन हो गया था। इसके अतिरिक्त एक अन्य तत्व था जो जापान को नियंत्रित किए हुए था, वह था राष्ट्र संघ की स्थापना। राष्ट्र संघ के विधान में सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी। राष्ट्र संघ के सदस्यों ने यह वचन दिया था कि वे किसी भी राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेंगे और यदि किसी सदस्य राष्ट्र पर आक्रमण हुआ तो वे सामूहिक रूप से आक्रांता की रक्षा के लिए आक्रमणकारी का विरोध करेंगे। चीन और जापान दोनों ही राष्ट्र संघ के सदस्य थे, इसलिए जापान द्वारा चीन पर आक्रमण करना खतरे से खाली नहीं था। तीसरा कारण जिसने जापान की साम्राज्यवादी गतिविधि को निष्क्रिय बना दिया था वह था जापान की आंतरिक राजनीति। 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में जापान के शासन पर उदारवादियों का प्रभाव था, उग्रवादी सैनिक तंत्र का नहीं। उदारवादी नेता आक्रामक विदेश नीति का विरोध कर रहे थे। इस समय तक जापान का पुराना सैनिक नेतृत्व जो साम्राज्यवादी नीति का पोषक था लगभग समाप्त हो चुका था। उदारवादी अंतर्राष्ट्रीय विषयों में सहयोग की नीति के समर्थक थे, अतः जापान कुछ समय तक साम्राज्य विस्तार के लिए कुछ भी नहीं कर सका। लेकिन जापान की यह शांतिपूर्ण नीति अल्पकालीन थी, उसकी साम्राज्यवादी नीति अंदर ही अंदर जागृत हो रही थी। वह अनुकूल परिस्थिति पाकर इस प्रवृत्ति को पुनः जीवित करने के लिए अवसर की खोज में था। 1930 ईस्वी में जापान की राजनीति ने एक नया मोड़ लिया और शीघ्र ही जापानी साम्राज्यवाद का द्वितीय चरण आरंभ हो गया। जापानी साम्राज्यवाद के पुनः उद्भव के निम्नलिखित कारण थे। इसमें पहला प्रमुख कारण है उग्र सैन्यवाद का उदय। जापानी साम्राज्यवाद के पुनः उद्भव का सबसे प्रमुख कारण जापान में उग्र सैन्यवादियों के प्रभाव में वृद्धि थी। सैन्यवादी जापान की राजनीति में पुनः सक्रिय हो गए। वे क्रांति के माध्यम से सैनिक शासन स्थापित करना चाहते थे। वे आक्रामक नीति का अनुसरण कर जापान की राजनीति में उत्पन्न संकट उत्पन्न करके उथल पुथल करना चाहते थे। इस कार्य में उन्हें जापानी पूंजीपतियों और उद्योगपतियों का भी समर्थन प्राप्त था। कारण कि विगत 10 वर्षों से जापान चीन के प्रति सद्भावनापूर्ण नीति का पालन कर रहा था और इस कारण जापान के पूंजीपतियों को बड़ी हानि उठानी पड़ रही थी। चीन में अब निरंतर जापान विरोधी आंदोलन हो रहे थे और चीनी जनता जापान के शासन का बहिष्कार और जापान के सामान का भी बहिष्कार कर रही थी। इन परिस्थितियों में जापानी उद्योगपतियों की बड़ी हानि हो रही थी और उनकी इच्छा थी कि जापान सरकार चीन के प्रति उग्र नीति का पालन करके बहिष्कार आंदोलन को सदा सदा के लिए दबा दें। साधारण नागरिक प्रशासन में यह संभव नहीं था, अतः जापान के पूंजीपति सैनिक तंत्र की स्थापना के कट्टर समर्थक बन गए थे। पूंजीवादियों का जोरदार समर्थन प्राप्त करके सेना के अधिकारी अपने लक्ष्य की प्राप्ति का प्रयास करने लगे और जापान की आंतरिक राजनीति पूर्णतः अशांत हो गई। कुछ ही समय में सैनिकवादियों के प्रभाव में वृद्धि हो गई और उन्होंने राज्य के नीति निर्धारण में असैनिकवादियों के प्रभाव को बिल्कुल समाप्त कर दिया। अब जापान ने पुनः उग्र साम्राज्यवादी नीति का पालन करना आरंभ कर दिया। दूसरा प्रमुख कारण है विकृत राष्ट्रवाद का उदय। इसी समय जापान में विकृत राष्ट्रवाद का उदय हुआ। एक जापानी संस्था कोकुर युकाई ने 1930 ईस्वी में अपनी 30वीं वर्षगांठ मनाई। इस अवसर पर दो भागों में कोरिया के विलय का एक गुप्त इतिहास भी प्रकाशित किया। इसमें कहा गया कि जापान के लोगों को पूर्वी संस्कृति की महान पद्धति का विस्तार करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इसमें यह भी कहा गया था कि जापान को अपनी कूटनीति में तीव्रता लाकर विदेश नीति का विस्तार करना चाहिए। इस विचार से प्रभावित होकर जापान में अनेक संस्थाएं, समितियां तथा गोष्ठियां स्थापित हुई। इन्होंने विशिष्ट व्यक्तियों की जो उदार विदेश नीति के समर्थक थे हत्या करना अपना परम धर्म बताया। 1930 ईस्वी में प्रधानमंत्री हासागुची को गोली मारकर हत्या कर दी गई। कुछ सैनिक पदाधिकारियों ने टोक्यो में आतंक उत्पन्न करके 1932 ईस्वी में पुनः प्रधानमंत्री की हत्या कर दी। न्यायालय में इन लोगों ने जो अपने बयान दिए उसमें उन्होंने राष्ट्र की दबू नीति की बड़ी कड़ी आलोचना की। इस प्रकार जापान में एक अत्यंत ही विकृत राष्ट्रवाद का उदय हुआ जिसने जापानी साम्राज्यवाद को नवजीवन प्रदान किया। चीन की राजनीति में नवीन मोड़ को देखकर उग्रवादी जापानी नेता सशंकित हो गए। 1926 ईस्वी में नानकिंग सरकार पर चियांग काईशेक का प्रभाव स्थापित हो गया। तब से चीन में निरंतर राजनीतिक एकता स्थापित करने के प्रयास होने लगे। चियांग काईशेक ने सैनिक सरदारों को समाप्त कर दिया और घोर मतभेद होते हुए भी उसने कम्युनिस्टों के साथ बहुत हद तक चीन की राजनीतिक एकता स्थापित की। उसने चीन में विदेशी पट्टे भी समाप्त करने का प्रयास किया। राष्ट्रवादी चीनी नेताओं की इन सफलताओं से जापानी नेता चौकन्ने हो गए। जापान के पूंजीपतियों तथा सैनिकवादियों के विचार में चीन का विभाजित तथा निर्बल रहना उनके लिए लाभकारी था, परंतु जिस तीव्र गति से चीन अपनी राजनीतिक एकता स्थापित करता जा रहा था उससे वे चिंतित हो उठे और वे सोचने लगे कि अगर यह क्रम जारी रहा तो शीघ्र ही जापान को चीन में मिली समस्त सुविधाओं का परित्याग करना पड़ेगा। अतः राजनीतिक दृष्टिकोण से चीन के शक्तिशाली होने से पूर्व ही जापानी नेता चीन पर आक्रमण करके ऐसी स्थिति उत्पन्न करना चाहते थे जिससे चीन में पूर्ण एकता स्थापित न हो सके। चौथा कारण था बोल्शेविकवाद का भय। कुमिंगतांग दल का नेतृत्व चियांग काईशेक के हाथों में आ जाने के उपरांत चीन तथा सोवियत रूस के संबंध में कटुता उत्पन्न होने लगी। दोनों देशों के संबंधों में 1929 ईस्वी में अत्यधिक कटुता आ गई और दोनों ही देशों की सीमा मंचूरिया सीमाएं पर एकत्र हो गई। नवंबर 1929 ईस्वी में रूसी सेनाओं ने मंचूरिया पर आक्रमण भी कर दिया और चीनी सेनाएं रूसी सेनाओं के इस आक्रमण को रोकने में विफल रही और छिन्न भिन्न होकर पीछे हटने लगी। हेलार नामक स्थान पर 10,000 से भी अधिक चीनी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। 3 दिसंबर को मंचूरिया के प्रशासक ने रूसी शर्तों को स्वीकार कर लिया तथा 22 दिसंबर को रूसी चीनी संधि पर हस्ताक्षर हो गए तथा रूसी सेनाओं की सभी इच्छाओं की पूर्ति हो गई। मंचूरिया में रूस के कार्यालय स्थापित हो गए और रूसी कर्मचारी भी कार्य करने लगे। इन सब घटनाओं ने जापान की नीति को प्रभावित किया और जापान ने अनुभव किया चीन की सरकार अभी भी निरर्थक तथा बेकार है, वह रूस की सरकार का सामना नहीं कर सकती, उसमें मंचूरिया की रक्षा करने का साहस नहीं है। इधर मंचूरिया में जापान के अपने स्वार्थ थे तथा मंचूरिया में रूसी बोल्शेविकों का अधिकार जापानियों को असह्य था, अतः जापान ने उग्रवादी नीति का पालन करके मंचूरिया पर आधिपत्य स्थापित करने का निश्चय किया। जापान ने एक अन्य कारण से भी बोल्शेविकवाद के संकट का अनुभव किया। चीन में साम्यवादी दल के प्रभाव में निरंतर वृद्धि हो रही थी और उसके नेतृत्व में श्रमिक तथा कृषकों का आंदोलन सशक्त हो रहा था। चीनी साम्यवादियों को अपने देश की राजनीति में प्रमुख स्थान प्राप्त होता जा रहा था। जापान की सरकार ने इस संभावना पर विचार किया तथा इस निश्चय पर पहुंची कि यदि चीन में किमिंगतांग तथा कम्युनिस्ट संघर्ष में साम्यवादी विजयी हुए तो चीन में विदेशी प्रभाव का अवश्य ही अंत कर दिया जाएगा। अतः जापान चीन पर आक्रमण करके वहां के आंतरिक परिस्थिति में इस प्रकार का परिवर्तन कर देना चाहता था जिससे वहां कम्युनिस्ट आंदोलन दब जाए। जापान में सैनिकवादियों ने अपने कार्यक्रम में इस उद्देश्य को प्रमुख स्थान दिया। जापान ने 1931 ईस्वी में चीन पर आक्रमण करते हुए यह प्रसार किया कि उनके आक्रमण का उद्देश्य पूर्वी एशिया की साम्यवाद की रक्षा करना है। वास्तव में इस प्रकार के प्रचार से जापान का उद्देश्य पश्चिमी राष्ट्रों का समर्थन प्राप्त करना था और उसे अपने उद्देश्य में सफलता भी प्राप्त हुई। जापानी आक्रमण से उत्पन्न स्थिति पर जब जब राष्ट्रसंघ ने विचार किया तो यूरोप के महान पूंजीवादी तथा साम्राज्यवादी राज्यों ने जापान का ही समर्थन किया क्योंकि उनको विश्वास था कि जापान का वास्तविक उद्देश्य बोल्शेविकवाद का विनाश करना है। 1930 ईस्वी का आर्थिक संकट। 1931 ईस्वी में जापानी साम्राज्यवाद की पुनरावृत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण था 1930 ईस्वी का विश्वव्यापी आर्थिक संकट, जिस संकट ने सभी देशों को साथ जापान को भी काफी प्रभावित किया था, जिसे आप महान आर्थिक संकट के नाम से भी जानते हैं। 1930-31 में जापानी निर्यात के मूल्य में 50% की कमी हो गई और 1931 ईस्वी के अंत तक यह कमी 70% हो गई। 30 लाख से भी अधिक आदमी बेकार हो गए। अक्टूबर 1930 ईस्वी में फसलों में पिछले वर्ष से 12% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया। इससे चावल का मान गिरकर 16 येन हो गया, जबकि उसके उत्पादन में 70 येन की लागत आती थी। इसी समय उत्तर पूर्वी जापान में फसलें मारी गई और जापान की खाद्य समस्या ने विकट रूप धारण कर लिया। बच्चे नगर मार्गों पर भिक्षा मांगने लगे और भूखे किसान वृक्षों की छाल तथा पृथ्वी के अंदर से जरमूल आदि खोद कर खाने लगे। शहर के चकलों के दलाल उनकी असहाय अवस्था का अनुचित लाभ उठाकर उनकी लड़कियों का सौदा करते और जापान के नगरों में यह अनैतिक व्यापार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। साधारण जनता ने इस संकट के लिए पूंजीपतियों को दोषी ठहराया। क्योंकि वास्तव में वे ही इसके लिए उत्तरदायी भी थे। जापान की जनता का शोषित वर्ग शोषकों के विरुद्ध आवाज उठाने लगा। इन परिस्थितियों में अपनी रक्षा के उद्देश्य से जापानी पूंजीपतियों ने विकृत देशभक्ति की भावना को उभारकर जनता का ध्यान भूखमरी बेकारी से हटाकर दूसरी ओर आकर्षित करने का संगठित प्रयास किया। उग्र सैनिकवाद और आक्रामक विदेश नीति का सहारा लेकर ही वे अपने उद्देश्य में सफल हो सकते थे। इस प्रकार जापानी साम्राज्यवाद की पुनरावृत्ति में 1930 ईस्वी के महान आर्थिक संकट की निर्णायक भूमिका रही थी। छठी समस्या, बढ़ती हुई आबादी की समस्या। दुर्भाग्य से इस समय जापान की जनसंख्या बड़ी तीव्र गति से बढ़ रही थी। यही वृद्धि लगभग 9 लाख प्रति वर्ष थी। इस बढ़ती हुई आबादी को बसाने के लिए जापान को नए स्थान की आवश्यकता थी। इस समस्या का एकमात्र समाधान यह था जापानी लोग विदेशों में जाकर बसें। लेकिन ऑस्ट्रेलिया तथा अमेरिका की सरकारों ने जापानी प्रवासियों के लिए कठोर नियम बना दिए और उनके आवास पर भी प्रतिबंध लगा दिए थे। अब इन महाद्वीपों में जापानी जाकर नहीं बस सकता था, क्योंकि जापानी मजदूर चीनी मजदूरों के मुकाबले में कम काम करते थे और मजदूरी अधिक लेते थे। ऐसी दशा में जापान की सरकार का ध्यान मंचूरिया की ओर गया। उसका विचार था यदि मंचूरिया पर अधिकार कर लिया जाए तो उनकी समस्या का बड़ी सीमा तक समाधान हो जाएगा। मंचूरिया में जापान की बढ़ती हुई आबादी को बसाया जा सकता था। इस कारण जापान किसी न किसी प्रकार मंचूरिया पर अधिकार स्थापित करने की योजना बनाने लगा। विस्तृत आर्थिक क्षेत्र की खोज। इस समय तक जापान में औद्योगिक क्रांति बड़ी तीव्रता के साथ प्रगति कर रही थी और अब व्यापार ही इसके आर्थिक जीवन का आधार था। जापानी माल का निर्यात साधारणतः दो दिशाओं में होता। उसके कच्चे रेशम का बाजार अमेरिका और सूती कपड़े का बाजार चीन था। रेशम विलास की वस्तु है और 1930 ईस्वी में आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ तो अमेरिका में किसी व्यक्ति में विलास की वस्तु खरीदने की शक्ति नहीं थी। इससे जापान के व्यापार को गहरा आघात पहुंचा। दूसरी ओर चीन में भी निरंतर जापान के विरुद्ध भावना बनी रहती थी, जिसके फलस्वरूप चीन में अक्सर जापानी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन चलता रहता। इसके अतिरिक्त आर्थिक संकट के कारण संसार के देश आर्थिक क्षेत्र में संरक्षण नीति का पालन कर रहे थे। इस कारण जापानी मालों के बिकने में और अधिक दिक्कत हो रही थी। जापान अनुभव करता था उसका क्षेत्र अति संकुचित और सीमित है। अपने यहाँ निर्यात माल को खपाने के लिए जापान एक विस्तृत आर्थिक क्षेत्र की आवश्यकता अनुभव करता, जहाँ उसे आयात करो तथा संरक्षण नीति का भय ना हो। आठवां कारण, तनाका मेमोरियल। जापान को इन नई परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही अपनी नीतियों का निर्धारण करना पड़ता। जापान के लिए इस समय प्रसार का क्षेत्र केवल चीन ही था, लेकिन चीन में विदेश विरोधी भावनाएं बड़ी प्रबल हो रही थी और उनको ध्यान में रखकर जापान को कुछ ना कुछ करना आवश्यक था। तत्कालीन प्रधानमंत्री वैरन तनाका गोइची ने चीन के प्रति दृढ़ नीति अपनाने का निश्चय किया और उसने इसके लिए तनाका मेमोरियल नामक एक योजना का निर्माण किया। वास्तव में यह योजना जापान के साम्राज्यवादी प्रसार की थी, जिसमें जापान की बढ़ती हुई आबादी, कच्चे मालों की दुर्लभता, आर्थिक संकट आदि का उल्लेख करते हुए जापान के उग्रवादी नीति को ग्रहण करने की बात पर बल दिया गया था। मेमोरियल में कहा गया था कि मंचूरिया और मंगोलिया चीन के प्रांत नहीं है। चीन पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें पहले इन दो प्रांतों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। यदि हम चीन पर विजय प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं तो शेष एशिया के देश हमसे भयभीत होकर आत्मसमर्पण कर देंगे। चीन के संपूर्ण साधनों पर अधिकार करके हम भारत, पूर्वी द्वीप समूह, मध्य एशिया तथा यूरोप तक को जीत सकते हैं। परंतु इस दिशा में हमारा प्रथम पग मंचूरिया और मंगोलिया का नियंत्रण है। 1931 ईस्वी के बाद जापानी साम्राज्यवाद का जो विस्फोट हुआ उसका आधार यही तनाका मेमोरियल था।